एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, थॉमस पिकेटी की कैपिटल एंड आइडियोलॉजी। इसने ना दुनिया भर में आर्थिक सोच पर काफी गहरा असर डाला है।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल।
और ये किताब उन बुनियादी सवालों से जूझती है जो हम सब सोचते हैं, है ना, कि भाई समाज में इतनी असमानता क्यों है? कुछ लोग इतने अमीर और इतने सारे लोग गरीब क्यों? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था, या क्या ये जरूरी है?
बिल्कुल।
और आजकल ये जो अमीर गरीब के बीच की खाई की बात होती है, तो अक्सर लगता है कि ये सब बाजार की वजह से है, या शायद नई टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि ये तो होना ही था।
हाँ, एक तरह का आर्थिक नियतिवाद है ना।
हाँ
लेकिन पिकेटी इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, असमानता कोई मजबूरी नहीं है, ये असल में हमारे समाज के चुनावों का नतीजा है, हमारे बनाए नियम कानून और सबसे बढ़कर हमारी विचारधारा।
विचारधारा।
मतलब
हाँ
वो कहानियां जो हम खुद को और दूसरों को सुनाते हैं कि क्यों कुछ लोगों के पास ज्यादा होना ठीक है, क्यों ये व्यवस्था सही है।
अच्छा, तो चलिए इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनको जरा बारीकी से समझते हैं।
हाँ बिल्कुल। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये थॉमस पिकेटी है कौन। ये फ्रांस के एक बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, और आज के समय में दुनिया भर में आय और संपत्ति की असमानता पर शायद सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक माने जाते हैं।
हाँ, और इनकी जो पिछली किताब थी कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, वो तो कमाल ही कर गई थी। मेरा मतलब है, कौन सोचता है कि अर्थशास्त्र की इतनी भारी भरकम किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी?
सही बात है, पर वो किताब आम लोगों की बातचीत का हिस्सा बन गई।
वो क्यों, क्या खास बात है इनके काम में?
देखिए, वो सिर्फ थ्योरी पर बात नहीं करते, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने दशकों तक मेहनत की है, कई देशों के कई सदियों के आंकड़े खंगाले हैं,
आंकड़े? कैसे आंकड़े?
पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स, वसीयत के कागजात, जमीन के दस्तावेज, मतलब ऐतिहासिक डेटा का भंडार। और वो इन आंकड़ों में छुपे हुए पैटर्न को सामने लाते हैं, दिखाते हैं कि असल में क्या हो रहा है।
अच्छा, तो मतलब सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, इतिहास और राजनीति भी?
बिल्कुल, वो तीनों को जोड़कर देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि असमानता कितनी है, बल्कि ये भी समझाते हैं कि इसे सही ठहराने वाली सोच कैसे बदलती रही है, और किन राजनीतिक घटनाओं ने, किन फैसलों ने इसे कम या ज्यादा किया है। यही उनके काम को इतना प्रासंगिक बनाता है।
तो ये जो नई किताब है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, ये क्या कहती है, पिछली किताब से कैसे अलग है?
किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है कि समाज में कितनी ऊंच नीच होगी, कितनी असमानता होगी, ये कोई आर्थिक या तकनीकी मजबूरी तय नहीं करती।
तो फिर क्या तय करता है?
हमारे राजनैतिक और वैचारिक फैसले, समाज क्या मानता है, क्या नियम बनाता है, वही तय करता है।
अच्छा।
और पिकेटी हमें इतिहास की एक बहुत लंगी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प यात्रा पर ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जमानों में अलग अलग समाजों ने, चाहे वो मध्य युग का यूरोप हो, पारंपरिक भारत हो, या गुलाम रखने वाले समाज हो,
या आज का ग्लोबलाइज्ड सिस्टम?
हाँ बिल्कुल, हर समाज ने अपनी तरह की असमानता को बनाए रखने के लिए और उसे सही ठहराने के लिए खास नियम और कहानियां गढ़ी हैं। इसी को वो असमानता शासन या इनइक्वालिटी रिजीम कहते हैं।
असमानता शासन, ये क्या होता है? मतलब सिर्फ सोच?
नहीं, सिर्फ सोच नहीं, इसमें ठोस चीजें शामिल हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार किसके पास होगा, कितना होगा, टैक्स कौन देगा, कितना देगा, वोट डालने का अधिकार किसे होगा, ये सब नियम।
और इसके साथ वो विचारधारा वाली बात भी?
हाँ, और साथ में वो वैचारिक तर्क जो इन नियमों को सही ठहराते हैं, जैसे पुराने जमाने में राजा का दैवीय अधिकार था, है ना,
हाँ,
या आज के दौर में मेरिट यानी योग्यता का तर्क दिया जाता है, या फिर कहा जाता है कि बाजार अपने आप सब ठीक कर देगा। ये सब नियम और तर्क मिलकर तय करते हैं कि समाज में पैसा और पावर कैसे बटेगा।
समझ रहा हूँ। तो ये शासन बदलते रहे?
हाँ बिल्कुल। पिकेटी मुख्य रूप से तीन तरह के शासनों का विश्लेषण करते हैं। पहला, वो जिन्हें त्रिपक्षीय समाज कहते हैं, जहां समाज मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बटा था, पादरी, योद्धा और काम करने वाले।
जैसे मध्ययुगीन यूरोप या भारत की वर्ण व्यवस्था?
हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा स्वामित्ववादी समाज, प्रोप्राइट्रियन सोसाइटीज, जो आधुनिक युग में आए और जिन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार को सबसे ऊपर रखा।
और तीसरा?
तीसरा 20वीं सदी के सामाजिक लोकतांत्रिक समाज, सोशल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, जिन्होंने टैक्स और सरकारी योजनाओं के जरिए असमानता को कम करने की कोशिश की।
अच्छा, लेकिन ये किताब सिर्फ इतिहास बता रही है या आज के लिए भी कुछ कह रही है?
नहीं नहीं, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा मकसद आज की बहस में दखल देना है। पिकेटी ये साबित करना चाहते हैं कि आज हम जो भयानक असमानता देख रहे हैं दुनिया भर में, वो न तो जरूरी है और न ही समाज के लिए अच्छी है।
और क्या वो कोई समाधान भी देते हैं?
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, किताब के आखिर में वो एक वैकल्पिक व्यवस्था का खाका भी पेश करते हैं जिसे वो सहभागी समाजवाद कहते हैं, पार्टिसिपेटरी सोशलिज्म कहते हैं, एक ऐसा मॉडल जो ज्यादा बराबरी और आर्थिक लोकतंत्र ला सके।
सहभागी समाजवाद, ये दिलचस्प है, इस पर बाद में और बात करेंगे। अभी जरा किताब के जो अलग अलग हिस्से हैं उन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, वो इतिहास की कहानी कैसे बताते हैं।
हाँ, तो पहला हिस्सा जो है वो पुराने समाजों पर है, खासकर जिन्हें वो त्रिपक्षीय समाज कहते हैं, जैसे मध्ययुगीन यूरोप या पारंपरिक भारत का उदाहरण लें। समाज मोटे तौर पर तीन वर्गों में बटा था।
हाँ, प्रार्थना करने वाले, लड़ने वाले और काम करने वाले।
बिल्कुल, पादरी या ब्राह्मण, योद्धा या क्षत्रिय और बाकी सब जो मेहनत मजदूरी करते थे, किसान, कारीगर वगैरह।
और इनमें असमानता बहुत ज्यादा थी, है ना?
भयानक। आंकड़े दिखाते हैं कि मुट्ठी भर लोग, शायद आबादी का 2-3%, आधी से ज्यादा जमीन और संपत्ति के मालिक होते थे।
और इसे सही कैसे ठहराते थे?
धार्मिक तर्कों से, जन्म आधारित व्यवस्थाओं से, जैसे जाति, ये कहकर कि ये भगवान की बनाई व्यवस्था है या समाज के संतुलन के लिए जरूरी है।
इसके बाद
कानूनी और वैचारिक ढांचे खड़े किए ताकि गुलाम बनाए गए लोगों की या उपनिवेशों के लोगों की न सिर्फ संपत्ति हड़पी जा सके बल्कि उन्हें इंसान मानने से ही इनकार किया जा सके।
और इसमें संपत्ति के अधिकार का क्या रोल था?
यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये जो निजी संपत्ति का अधिकार है, जिसे आज हम बहुत पवित्र मानते हैं, ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल इन क्रूर व्यवस्थाओं को सही ठहराने और बनाए रखने में भी किया गया।
मतलब
गुलामों को भी संपत्ति माना जाता था, और जब गुलामी खत्म हुई तो कई मामलों में गुलामों को कोई मुआवजा नहीं मिला बल्कि गुलाम मालिकों को मुआवजा दिया गया क्योंकि उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ था।
ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है।
बिल्कुल, और पिकेटी का तर्क है कि इस ऐतिहासिक अन्याय की जड़ें आज भी दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच जो खाई है उसमें कहीं ना कहीं मौजूद हैं।
समझ गया, फिर तीसरा हिस्सा किस बारे में?
तीसरा हिस्सा महान परिवर्तन की बात करता है। ये 18वीं-19वीं सदी का दौर है जब स्वामित्ववादी समाज उभरे।
मतलब जब क्रांतियां हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति?
हाँ, इन क्रांतियों ने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकारों को चुनौती दी और कहा कि अब व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार और बाजार ही समाज का केंद्र होंगे।
लगा कि अब योग्यता और मेहनत से कोई भी आगे बढ़ सकता है।
पर क्या ऐसा हुआ? पिकेटी आंकड़ों से दिखाते हैं कि पूरी तरह नहीं। हाँ, पुराने जमींदार कमजोर हुए पर उनकी जगह नए अमीर आ गए, उद्योगपति, फाइनेंसर। निजी संपत्ति का अधिकार इतना पवित्र और मजबूत हो गया कि 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप और अमेरिका में संपत्ति कुछ ही हाथों में इतनी ज्यादा जमा हो गई थी
जितनी शायद पुराने राजतंत्रों में भी नहीं थी।
बिल्कुल, तो कागजी बराबरी के बावजूद असल असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
इसके बाद आता है चौथा हिस्सा।
हाँ, चौथा हिस्सा 20वीं सदी के मध्य का दौर है, लगभग 1914 से 1980 तक का। इसे पिकेटी सामाजिक लोकतांत्रिक समाज का दौर कहते हैं। ये वो समय था जब पश्चिमी देशों में असमानता में भारी कमी आई। इसे महान संकुचन, ग्रेट कंप्रेशन भी कहते हैं।
हाँ, सुना है इसके बारे में, पर ये हुआ कैसे?
और यहीं पिकेटी जोर देते हैं, ये बाजार के किसी जादू से नहीं हुआ, ये बड़े राजनीतिक फैसलों का नतीजा था। और ये फैसले क्यों लिए गए? क्योंकि 2 विश्व युद्ध हुए, भयानक आर्थिक मंदी आई, साम्यवाद का डर था, मतलब बड़े संकट थे।
अच्छा, संकटों के जवाब में?
हाँ, सरकारों ने अमीरों पर बहुत ऊंचे टैक्स लगाए, कभी कभी तो 80-90% तक।
80-90%?
हाँ, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया गया, मजदूरों के अधिकारों को मजबूत किया गया, इससे एक बड़ा मध्यम वर्ग बना।
लेकिन पिकेटी इसे अधूरी समानता कहते हैं, क्यों?
2 मुख्य कारण है। एक, इसने संपत्ति के मालिकाना हक के मूल ढांचे को ज्यादा नहीं छेड़ा और दूसरा, ये सारे सुधार राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर थे, हर देश अपने अपने यहाँ कर रहा था
और ये बाद में एक समस्या बन गया।
हाँ, क्योंकि जब पूंजी का वैश्वीकरण हुआ, पैसा आसानी से देशों की सीमाएं पार करने लगा, तो ये राष्ट्रीय मॉडल कमजोर पड़ गए
और यहीं से पांचवा हिस्सा शुरू होता है।
बिल्कुल, पांचवा हिस्सा असमानता की वापसी, यानी 1980 से लेकर अब तक का दौर। पिकेटी दिखाते हैं कि 1980 के दशक से एक नई विचारधारा हावी हुई, नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म,
यानी बाजार पर ज्यादा भरोसा, सरकार का दखल कम, टैक्स कम करो।
हाँ, यही सब। और नतीजा, ज्यादातर देशों में असमानता फिर से तेजी से बढ़ी है, खासकर सबसे ऊपर के 1% या 0.1% लोगों की संपत्ति और आय तो आसमान छू गई है।
और इसे सही ठहराने के लिए क्या कहानियां है? वही कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है या टेक्नोलॉजी की वजह से है या टैक्स कम करने से ही अर्थव्यवस्था बढ़ती है।
और सबसे बड़ी कहानी मेरिट की, कि जो अमीर है वो अपनी काबिलियत से है।
और पिकेटी इन दावों को चुनौती देते हैं
आंकड़ों से। वो दिखाते हैं कि ये भी राजनीतिक और वैचारिक चुनाव ही थे जिन्होंने इस वापसी का रास्ता खोला।
तो ये इतिहास का सफर हो गया। अब वो जो समाधान की बात कर रहे थे, छठा हिस्सा।
हाँ, छठा हिस्सा भविष्य की ओर देखता है। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ये एक प्रस्ताव है। पिकेटी जिसे सहभागी समाजवाद कहते हैं, उसका एक विजन पेश करते हैं।
और ये है क्या? क्या ये पुराने टाइप का सरकारी समाजवाद है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बाजार रहेगा, निजी उद्यम भी रहेगा, लेकिन जोर इस बात पर है कि धन और आर्थिक शक्ति का बंटवारा कहीं ज्यादा बराबरी से हो।
कैसे? क्या तरीके सुझाते हैं वो?
कुछ बहुत बड़े और सच कहूं तो क्रांतिकारी सुझाव हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्रगतिशील संपत्ति कर, मतलब जिनकी संपत्ति एक सीमा से बहुत ज्यादा है उन पर हर साल टैक्स लगे।
कितना टैक्स?
वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो सकता है, शायद सबसे बड़ी संपत्तियों पर 90% तक भी।
90% सालाना?
हाँ। फिर विरासत पर भारी टैक्स, ताकि कुछ ही परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी बेहिसाब दौलत जमा ना होती रहे।
और
कंपनियों के मुनाफे और उनके फैसलों में कर्मचारियों की बड़ी हिस्सेदारी, जैसे कंपनी के बोर्ड में आधी सीटें कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की हों।
अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग सोच है।
और एक और बड़ा आइडिया है, हर युवा नागरिक को 25 साल की उम्र में एक सार्वभौमिक पूंजी अनुदान देना।
मतलब सरकार हर युवा को एक मुश्त पैसा दे।
हाँ, एक शुरुआती पूंजी, ताकि हर किसी के पास जीवन में कुछ शुरू करने के लिए या अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए थोड़ी आर्थिक स्वतंत्रता हो।
ये सब सुनने में तो बहुत ही रेडिकल लगता है, क्या ये मुमकिन है?
देखिए, पिकेटी का तर्क है कि अगर हमें आज की भयानक असमानता से निपटना है और ज्यादा न्याय वाला समाज बनाना है, तो हमें ऐसे बड़े बुनियादी बदलावों के बारे में सोचना ही होगा। उनका लक्ष्य है एक ऐसी व्यवस्था जहां आर्थिक शक्ति कुछ गिने चुने हाथों में न हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसमें भागीदारी हो।
ये वाकई सोचने वाली बात है।
तो इस पूरी लंबी चौड़ी चर्चा से कुछ सबसे अहम बातें क्या निकल कर आती हैं? क्या हैं की टेकअवेज? मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात जो पिकेटी बार बार कहते हैं, वो ये है कि असमानता एक वैचारिक चीज है, कोई प्राकृतिक नियम नहीं।
मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है?
बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि समाजों ने बहुत अलग अलग स्तर की असमानता को अपनाया है और उसे सही ठहराने के लिए अलग अलग कहानियां गढ़ी हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि आज की असमानता भी बदली जा सकती है, अगर हम चाहें, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और अगर हम अपनी सोच बदलें।
ये उम्मीद जगाने वाली बात है। दूसरी अहम बात क्या है?
संपत्ति के नियमों का महत्व। असमानता सिर्फ तनख्वाह के फर्क से नहीं आती, असली खेल तो इस बात का है कि जमीन, मकान, कंपनियां, शेयर, यानी संपत्ति किसके पास है और उसके नियम क्या हैं।
तो पिकेटी कहते हैं कि सिर्फ इनकम टैक्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा।
नहीं, वो कहते हैं कि असली बदलाव के लिए संपत्ति के मालिकाना हक के जो नियम हैं, उन पर ही सवाल उठाना होगा, उन्हें बदलना होगा। हमारे यहाँ भी देखिए, जमीन के मालिकाना हक को लेकर कितने विवाद होते हैं, कितनी जटिलताएं हैं, ये इसी से जुड़ा है।
तीसरा पॉइंट।
तीसरा, आजकल मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता की बहुत चर्चा होती है ना?
हाँ, कि जो काबिल है वो आगे बढ़ेगा।
पिकेटी मानते हैं कि हाँ, शिक्षा जरूरी है, काबिलियत जरूरी है, लेकिन वो आंकड़ों से दिखाते हैं कि जब समाज में पहले से ही बहुत ज्यादा असमानता हो, तो अमीर लोग अपने बच्चों को बेहतर स्कूल, बेहतर कोचिंग, बेहतर नेटवर्क, सब कुछ मुहैया करा देते हैं।
तो फिर योग्यता की दौड़ शुरू होने से पहले ही वो आगे निकल जाते हैं।
बिल्कुल, ऐसे में ये दौड़ निष्पक्ष नहीं रहती। भारत में हम ये साफ देख सकते हैं, कोचिंग सेंटरों की होड़, महंगे प्राइवेट स्कूल। तो पिकेटी कहते हैं कि सिर्फ शिक्षा पर जोर देना काफी नहीं है जब तक संपत्ति की ये गहरी असमानता बनी हुई है।
चौथा मुद्दा क्या है?
राष्ट्र राज्य की सीमाएं। 20वीं सदी में जो सामाजिक लोकतंत्र सफल हुआ वो राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर काम कर रहा था।
हाँ, हर देश अपने नियम बना रहा था।
पर आज पैसा, कंपनियां, पूंजी, ये सब आसानी से एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं।
हाँ, ग्लोबलाइजेशन।
तो अगर एक देश अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करता है तो वो अपना पैसा कहीं और ले जा सकते हैं जहाँ टैक्स कम हो।
ये तो रेस टू द बॉटम वाली बात हो गई।
बिल्कुल, इसीलिए पिकेटी कहते हैं कि अब समाधान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सकते, टैक्स और नियमों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है।
और पांचवा अहम संदेश,
इतिहास में बदलाव की संभावना। पिकेटी का पूरा विश्लेषण यही दिखाता है कि इतिहास कोई सीधी रेखा में नहीं चलता। बड़े संकट आते हैं, युद्ध, आर्थिक मंदी, महामारियां, और ये संकट अक्सर पुरानी व्यवस्थाओं को हिला देते हैं, उन्हें तोड़ते हैं,
और यही बदलाव का मौका बनता है।
हाँ, इन मौकों पर राजनीतिक ताकतें, नेता, आंदोलन, पार्टियां क्या फैसले लेती हैं, इससे भविष्य तय होता है। यह हमें याद दिलाता है कि आज की व्यवस्था भी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। बदलाव मुमकिन है अगर लोग मिलकर कोशिश करें।
इस किताब में यकीनन कई ऐसी पंक्तियां होंगी जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास विचारों को अगर दोहराए।
हाँ, कई हैं। जैसे एक बहुत बुनियादी बात वो कहते हैं, हर समाज को अपनी असमानताओं को उचित ठहराना पड़ता है। अगर उनके लिए कारण नहीं ढूंढे गए तो पूरी राजनीतिक और सामाजिक इमारत ढहने का खतरा होता है।
मतलब कोई भी सिस्टम सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं चल सकता।
बिल्कुल, उसे एक कहानी चाहिए, एक लेजिटिमेसी चाहिए। लोगों को, खासकर जो व्यवस्था में नीचे हैं, यकीन दिलाना पड़ता है कि ये ठीक है या जरूरी है या इसे बदला नहीं जा सकता।
और जब ये यकीन टूटता है,
जब ही बड़े बदलाव की गुंजाइश बनती है।
दूसरा अहम विचार,
असमानता न तो आर्थिक है और न ही तकनीकी, ये वैचारिक और राजनीतिक है।
ये तो सीधी चोट है उस सोच पर कि टेक्नोलॉजी या ग्लोबलाइजेशन ही जिम्मेदार हैं।
हाँ, पिकेटी कहते हैं नहीं, ये हमारे फैसले हैं, हमारी नीतियां हैं, हमारी सोच है जो तय करती है कि टेक्नोलॉजी या बाजार का फायदा किसे मिलेगा। दोष मशीन का नहीं, मशीन चलाने वाले नियमों का है।
और संपत्ति पर वो क्या कहते हैं?
संपत्ति एक सामाजिक संबंध है, न कि प्राकृतिक अधिकार।
ये गहरी बात है। हम संपत्ति को अक्सर ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई कुदरती चीज हो,
लेकिन पिकेटी याद दिलाते हैं कि संपत्ति के नियम समाज ने बनाए हैं और समाज ही उन्हें बदल सकता है। कभी तो इंसान भी संपत्ति माने जाते थे, मतलब हम आज भी इन नियमों को बदल सकते हैं ताकि संपत्ति समाज के भले के लिए काम करे, न कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में जमा होती रहे।
एक और विश्लेषण उनका आज की राजनीति पर बहुत दिलचस्प लगता है।
हाँ, वो जो कहते हैं हम एक बहु अभिजात वर्ग राजनीतिक व्यवस्था का उदय देख रहे हैं जिसमें उच्च शिक्षितों का ब्राह्मण वाम, ब्राह्मण लेफ्ट, और उच्च धनवानों का व्यापारी दक्षिण, मर्चेंट राइट है, और दोनों ने निम्न और मध्यम वर्गों को पीछे छोड़ दिया है।
ये तो आज की राजनीति की नब्ज पकड़ने जैसा है।
हाँ, क्यों पारंपरिक पार्टियां आम लोगों से कट रही हैं, क्यों लोक लुभावन नेता लोकप्रिय हो रहे हैं। पिकेटी का विश्लेषण कहता है कि दोनों तरफ की मुख्य धारा की पार्टियां अब अलग अलग तरह के एलीट वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा करती हैं और आम मेहनतकश लोग खुद को अलग थलग पाते हैं।
तो ये सब जो भारी भरकम विचार हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, हमारे समाज से क्या लेना देना है?
बहुत कुछ। सबसे पहली बात तो ये कि पिकेटी के तर्क हमें सरकारों की नीतियों और आर्थिक बहसों को ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देखने की समझ देते हैं। जब कोई नेता या एक्सपर्ट कहता है कि अमीरों पर टैक्स लगाना नामुमकिन है या इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी,
तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये सच है या सिर्फ एक खास विचारधारा है जो किसी के हितों की रक्षा कर रही है।
बिल्कुल। दूसरा, यह हमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे समझने का एक नया नजरिया देता है। जैसे कई देशों में राष्ट्रवाद या पहचान की राजनीति का उभार, क्या इसका लेना देना बढ़ती आर्थिक असुरक्षा और गुस्से से है? पिकेटी का काम इन चीजों को जोड़ने में मदद करता है।
इसे हम अपने काम की जगह पर भी सोच सकते हैं।
हाँ, क्यों नहीं। दफ्तरों में सैलरी में इतना फर्क क्यों होता है? क्या ये सिर्फ स्किल या मेहनत का मामला है या इसमें कंपनी की पॉलिसी, मैनेजमेंट का नजरिया, समाज की सोच, इन सब की भी भूमिका है?
पिकेटी के विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या मुनाफे का बंटवारा ज्यादा न्यायपूर्ण हो सकता है,
क्या कर्मचारियों की आवाज को ज्यादा महत्व मिल सकता है,
और व्यक्तिगत स्तर पर?
व्यक्तिगत स्तर पर ये हमें मेरिटोक्रेसी के विचार पर दोबारा सोचने को कहता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, पर यह समझना भी जरूरी है कि हम जिस सिस्टम में हैं वो सबके लिए बराबर मौके नहीं देता।
शायद इससे उन लोगों के प्रति ज्यादा हमदर्दी पैदा हो जो कड़ी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं,
और शायद हम अपनी सफलता को सिर्फ अपनी काबिलियत का नतीजा ना मानकर उसमें किस्मत और व्यवस्था के योगदान को भी देख पाएं।
स्थानीय स्तर पर भी कुछ मतलब है इसका?
हाँ, ये सामुदायिक पहलुओं के महत्व को रेखांकित करता है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, किसानों के समूह बनाना या मोहल्ला सभाओं में मिलकर बजट तय करना। ये सब तरीके हैं जिनसे आम लोग अपने आसपास के आर्थिक फैसलों में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकते हैं। ये पिकेटी के सहभागी समाजवाद के विचार से जुड़ता है।
तो इस पूरी चर्चा से, इस विशाल किताब के मंथन से सबसे बड़ी सीख क्या रही आपके लिए?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता न तो कुदरती है, न ही जरूरी और न ही समाज के लिए अच्छी है। यह हमेशा हमारे राजनीतिक और वैचारिक चुनावों का नतीजा होती है, और सबसे अहम बात, इसे बदला जा सकता है। ये किताब निराशा से निकालकर संभावनाओं की ओर देखने का हौसला देती है।
और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये थी कि इतिहास में जब भी असमानता में बड़ी कमी आई है, वो अक्सर बड़े संकटों के बाद ही आई है। युद्ध, क्रांति, महामंदी, ये थोड़ा चिंताजनक तो है, पर यह भी दिखाता है कि बड़े बदलाव तभी होते हैं जब पुरानी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। और शायद आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन या महामारी, वो हमें फिर से सोचने पर मजबूर करें, क्या हम इतनी असमानता के साथ इन समस्याओं का सामना कर सकते हैं? ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये न्याय, लोकतंत्र और हम सबके साझा भविष्य के बारे में है।
और अब सवाल ये उठता है कि आज हम जिस विचारधारा के साए में जी रहे हैं, जिस कहानी पर यकीन कर रहे हैं, क्या वो हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने लायक है, या हमें नई कहानियों और नए नियमों की जरूरत है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।